ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ دو روز قبل آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل یو کے امانو نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں اپنی رپورٹ جاری کی، اور حسب معمول اس رپورٹ میں بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں وہی دعوے کیے گئے جو اس سے پہلے بارہا دہرائے گئے۔ البتہ اس بار یو کے امانو نے دو ایک قدم آگے بھی بڑھا دیے، اور ان کی رپورٹ اس طرح کی سطحی اور غیر متوازن، غیر موضوع اور غیر پیشہ وارانہ دی کہ روس، چین اور ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں نے بھی اس پر واویلا مچایا اور سخت اعتراض کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی اے کا ادارہ صرف امریکہ کے ہاتھوں کا ہی کھلونا بن کر رہ گیا ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے اور اس پر حرکت میں آئیں گے کہ اس عالمی ادارے کو کسی ایک ملک یا صرف چند ملکوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بننے دیا جائے۔ بہرحال یو کے امانو کی اس رپورٹ پر جہاں امریکہ اور صہیونی حکومت نے بغلیں بجائیں اور اپنے زوم میں خوشیاں منائیں، وہیں بیشتر ملکوں نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا، من جملہ چین، روس اور ناوابستہ تحریک میں شامل سبھی ممبر ملکوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ رپورٹ امریکی پالیسی سے متاثر ہے۔ چلتے ہیں ہم اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر پروفیسر نذیر حسین۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم عباس رضوی صاحب۔
جی نوازش آپ کی۔ پروفیسر صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ نے ایک انتہائی مضحکہ خیز الزام لگایا تھا کہ وہ واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفیر کے قتل کے منصوبے میں ملوث ہے اور منصوبہ بنا رہا۔ ابھی اس رسوائی سے وہ ابھر نہیں پایا تھا کہ ایک بار پھر اس نے کوشش کی کہ ایران کے سلسلے میں یا ایران کے خلاف ایک نیا ڈرامہ رچا جائے، اور اس نے اس بار آئی اے کا آڑ لیا۔ آئی اے نے اپنی رپورٹ میں وہی بے بنیاد اور تکراری دعوے کیے ہیں جو اس سے پہلے بھی، کہ ایران کوشش کر سکتا ہے یا کوشش کر رہا ہے، اور ابھی تک اس نے اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا۔ تو اس مرحلے پر ایک بار پھر اس طرح کی تکراری رپورٹ پیش کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
باسری صاحب، اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے تو یہ مجھے مضحکہ خیز نظر آ رہا ہے، اور آپ نے اپنی تمہیدی جملات میں بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ابھی وہ سعودی عرب والے پلاٹ سے باہر نہیں نکلے کہ ایک اور پلاٹ میں انہوں نے قدم رکھ لیا ہے، اور اس کا کوئی بھی ایویڈنس ان کو موجود نہیں ملا، نہ ملا ہے نہ ملے گا، کیونکہ یہ ایک ڈرامہ تھا اور ڈرامہ رچانے کا مقصد یہی تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پہ جو ہے پریشر زیادہ مضبوط کیا جائے، اور اس کا کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی مجھے وہ دن بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وال اسٹریٹ میں جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اس کا ذمہ دار بھی کل کلاں کو ایران کو قرار دیا جائے گا، لیکن فی الحال شاید ان کے ذہن میں یہ اختراع نہیں موجود ہوئی۔ جہاں تک آئی اے کی رپورٹ کا تعلق ہے تو اس رپورٹ میں اتنے تضادات ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے آئی اے نے جو بھی ایران کے خلاف مواد جمع کیا اس کی نہ کوئی بیس تھی، نہ کوئی حقیقت تھی، اور نہ کوئی ٹھوس اس میں ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ ابھی اس رپورٹ میں مجھے وہ صدام حسین کے خلاف ایک رپورٹ یاد آ رہی جو 1990 میں اور 1991 میں تیار کی گئی تھی کہ صدام کے پاس جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، لیکن ہینس بلکس نے تبھی کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی کس کس قسم کی چیز نہیں ہے، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے عراق پہ حملہ کر دیا تھا۔ مجھے بھی اسی رپورٹوں میں وہ کوئی حقیقت یا کوئی سچائی یا کوئی ویسی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں، حالانکہ یہ میرا سٹائل نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے آڈینس اس وقت پوری دنیا میں ہیں اس لیے ان کو بتانا ضروری ہے، یہ ایک اخبار ہے انٹرنیشنل ہرالڈ ٹرائبیون، یہ نیو یارک ٹائمز کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اس نے پوری ایران پہ ایک رپورٹ نشر کی ہے۔ اس کا میں ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں پڑھنے کی جسارت کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس کا اردو ترجمہ بھی کروں گا، دی رپورٹ ڈز ناٹ کلیم دیٹ ایران ہیز ماسٹرڈ آل دی نیسیسری ٹیکنالوجیز Nor does it estimate how long it will take for Iran to be able to produce a nuclear weapon. पहले इससे कहिए कि रिपोर्ट में ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाना है उसके लिए तमाम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रही है, और ये भी नहीं बताया गया कि कब तक ईरान जो है वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, इंस्पेक्टर्स डू नॉट पॉइंट टू ए सिंगल वेपन लैब और प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए फुली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर वेपन। के रिपोर्ट में ये बिल्कुल नहीं बताया गया, इंस्पेक्टर ने बिल्कुल नहीं बताया कि ये कोई कंस्ट्रक्शन हुई है या कोई न्यूक्लियर लैब ऐसी उनको मौजूद मिली हो। ये मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स जो बड़ा एक मोतबर वहाँ का अखबार है, उसका एनालिसिस है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ना ही रूस जो है इसको मानने के लिए तैयार है, ना ही चाइना इसको मानने के लिए तैयार है, बल्कि अभी मैं इसी में एनालिसिस एक पढ़ रहा था कि वाशिंगटन के एक थिंक टैंक ने यह कहा है कि इस रिपोर्ट में इतने तजादात हैं कि किसी भी अकलमंद और बाशऊर आदमी को और एनालिस्ट को इस पर एतबार करने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा मेरी तरफ से तो यही है कि ये एक और तरीका है ईरान पे प्रेशराइज करने का और ईरान को मजीद सेंक्शन में डालने का। लेकिन जैसे कि ईरान की कौम गुज़िश्ता 30 सालों से बहादुरी का मुजाहरा करती आ रही है, मुझे तवक्को है और उम्मीद है कि जैसे ईरानी लीडरशिप ने, आयतुल्ला अली खमेनाई साहब ने भी बयान दिया है और सदर अहमदिनेजाद ने भी बयान दिया है कि ईरानी कौम जो है वो इस किस्म के धोस धंपे में या इस किस्म की चीज़ों में नहीं आएगी। लिहाजा ये एक मजीद एक मजाका खेत प्लाट है जिसमें वह सहूनी ताकत को खुश करने के लिए, अपने आप को मजाका खेजी के लिए और अपने आवाम के नज़रों में गिरने की एक कोशिश मजीद कर रही है।
जी प्रोफेसर साहब, इससे पहले तकरीबन अपनी 80 रिपोर्टों में कमोबेश तफसीली और जुजी सब मिलाकर मजमूई तौर पर IAEA ने ये कहा, चाहे वो अलबरादरी का ज़माना हो या खुद अमानों का ज़माना हो, कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित हो सके कि ईरान के एटमी प्रोग्राम में किसी तरह का इन्हराफ पाया गया हो। यानी ये इन्हराफ की बात है ना कि एटम बम बना रहा हूँ, इन्हराफ पाया गया, यानी ऐसे भी सबूत नहीं मिले। और आखिर में जाके एक ज़मीमा लगा दिया जाता था अमरीकियों को खुश करने के लिए कि मगर ईरान को चाहिए कि वो पूरी तरह से तआवुन करे, और जिस तरह से तआवुन करना चाहिए वो तआवुन नहीं कर रहा है। IAEA के कैमरे लगे हुए हैं, उनके इंस्पेक्टर 4000 बार मुआयना कर चुके हैं और तमाम सरगर्मियां उनके कैमरों की निगरानी में अंजाम पा रही है। अब क्या तआवुन चाहिए? 3 साल तक रजाकाराना तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी खुद ब खुद रोक दी थी बहाली एतमाद के लिए, इससे बढ़ के तआवुन क्या हो सकता है? क्या मकसद हासिल करना चाहती है इस तरह की रिपोर्टों के जरिए IAEA या उसके जो पसे पर्दा जो उसके लोग हैं?
मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ, देखिए इस वक्त जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो एक $multi-billion एक एक्टिविटी है, ट्रेड है। एक तरफ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अमेरिका जो है वो भारत को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तआवुन में इतनी पेशकश कर रहा है, फ्रांस उनको पेशकश कर रहा है, रूस उनको पेशकश कर रहा है, दूसरे ममालिक पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ ये चीज़ें क्यों हैं। मुझे इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं आपकी इजाज़त से। एक तो यही कि ईरान पर मज़ीद प्रेशर डाला जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ना इसमें चाइना शामिल है ना इसमें रूस शामिल है, वो किसी किस्म का मज़ीद प्रेशर, बल्कि रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने तो बिल्कुल ये कह दिया है कि ये मज़ाक़ा खेज़ है, बेसलेस है, बायस है, लिहाजा हम इस पर कोई तबसरा करने के लिए भी तैयार नहीं है, और इसकी टाइमिंग भी बहुत गलत है। इस वक्त में जबकि ईरान जो है वो मुज़ाकराती टीम पर आने के लिए तैयार था, इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस रिपोर्ट को इस वक्त ये रिलीज़ किया जाता। और दूसरी बात ही अब ये देखें कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइनीज़ और रशियन इकॉनमीज़ को भी फ़रोग हासिल हो, क्योंकि देखें चाइना और रशिया के ज़ाहिर है अगर स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं तो इकोनॉमिक ताल्लुकात भी हैं ईरान के साथ, जो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल में तआवुन में इमदाद, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल की तआवुन। लिहाजा ये दो मकसद, और तीसरा मकसद डेफिनेटली इस जगह देखें अमेरिकन सदर बराक ओबामा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है बुरी तरह फंस चुकी है, उनको नाकामियों का सामना अफगानिस्तान में हो चुका है, अभी वो इराक से निकल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को कुछ बताने के लिए कि हम एक ईरान को ठोंक रहे हैं, ईरान पर प्रेशराइज कर रहे हैं, ईरान पर मजीद सेंक्शन लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसके अलावा कोई और मकासद हों। देखिए मुझे भी ये बात बिल्कुल समय, ईरानी तारीख का एक अदना सा तालब इलम हूँ और मैं अक्सर ये बात अमेरिका में भी कह चुका हूँ, फ्रांस में भी कह चुका हूँ, कई ममालिक में भी कह चुका हूँ कि भाई मेरे ईरान की तारीख गुज़िश्ता 2500 साल पुरानी है। ईरानी आइडियोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं वो अपनी जो ताकत है वो इस्लाम से लेती हैं, और क्या अमेरिका की टोटल जो हिस्ट्री है वो 200 साल पुरानी है, तो कहाँ 200 साल और कहाँ 2500 साल। अगर आप लोगों ने ईरान को एंगेज करना है, अगर आप लोगों ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो डायरेक्ट मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और बिला किसी शर्त के मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए कि ईरान ना लीबिया है, ईरान ना नॉर्थ कोरिया है, ईरान ना इराक है, लिहाजा अगर ईरान के साथ किसी किस्म की भी मुज़ाकरात करने हैं, नतीजा खेज मुज़ाकरात करने हैं, तो कोई शर्त नहीं रखनी पड़ेगी और खुले दिल से और खुले दिमाग से सामने आना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने सहूनी ताकत को या अपने डोमेस्टिक मफादात के लिए ईरान को प्रेशराइज करना है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें वो गुज़िश्ता 6 सालों में कामयाब हुए हैं और ना कभी आइंदा वो होंगे। लिहाजा ये वो मकासद हैं जिनके तहत वो ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और मैं फिर यही कहूँगा कि ये बेसूद और बेहासिल होगा।
जी प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में मौजूद रहिएगा, हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, मौजू है IAEA की रिपोर्ट इस्लामी जमहूरी ईरान की पुरान एटमी सरगर्मियों के ख़िलाफ़। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आइंदा भी और आगे भी चलकर हमारी ये गुफ्तगू मौजूद मेहमानों से होगी, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है इस्लामी जमहूरी ईरान की पुरान एटमी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ IAEA की रिपोर्ट हमारा मौजू है, गुफ्तगू है, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जहां इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नज़ीर हुसैन, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्ट्रेटजिक उमूर के माहिर और मुमताज़ ईरानी दानिश्वर डॉक्टर अहमद रोशन फिक्र राज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले भी IAEA की रिपोर्टें दो पहलू हुआ करती थी ईरान के बारे में, लेकिन इस बार की रिपोर्ट कुछ इस तरह से आई है कि अमेरिका और सहयोगी हुकूमत कुछ ज़्यादा ही ये बगले में जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, क्या ख़ास बात है इस बार की रिपोर्ट पे?
मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ आपकी खिदमत में, اور آپ کے سامعین کی، آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور یہ جو اوباما اور ان کے انتظامیہ نے جو سیاسی حرکتیں شروع کی ہیں، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ فنی اور تکنیکی امور پر بھی اور پیشہ ورانہ امور پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، جیسے آئی اے ای اے کے امور. یہ رپورٹ جو یوکیا آمانو نے پیش کی، یہ کوئی ایک نئی بات کوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسی رپورٹیں آ چکی ہیں. اور جو باتیں آئی اے ای اے اور دیگر اداروں نے پیش کی تھی، ہم نے ان سب کا جواب دے دیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے ایٹومک پروگرام کا، جو پرابلم بنایا گیا ہے، اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے. اور مغربی ملکوں کے الزامات کو تین حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے. ایک جو ہے وہ ایل کانٹینئر کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے، مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ یہ موبائل ہے، لہذا جو ہے وہ ایٹومک انرجی میں استعمال کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹومک وار ہیڈ ڈیولپ کر رہا ہے. اور تیسرا ان لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے فوجی پہلو ہیں. اس کے علاوہ جتنی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب تکراری الزامات ہیں. اور یہ باتیں جو ان لوگوں نے کنٹینر کے بارے میں کہی ہیں کہ یہ لیبوریٹری ہے، یہ ایک غلط بات ہے اور جھوٹا الزام ہے. لہذا ہم یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے لیے جو ہے وہ بیرونی ماہرین سے استفادہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہر ملک کرتا ہے. اور ہم نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے سیفٹی اسٹینڈرڈس پر دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی کی ہے. اس کے نتیجے میں مغربی ممالک نے جو ہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا، اور تقریباً 20 سوال ہمارے سامنے پیش کیے جن کا ہم نے شافی اور تفصیلی جواب دیا. اور مسٹر اومانو نے جو رپورٹ پیش کی ہے کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے، امکان پایا جاتا ہے کہ ایران بطور مثال ایٹمی وار ہیڈ بنا رہا ہے. اب اس کے سیاسی پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسلامی بیداری پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے مسائل پیش کیے ہیں، تاکہ وہ ان حالات میں اپنی پٹھو حکومتوں کو سرنگون ہونے سے بچا سکے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے حمایت یافتہ کئی ڈکٹیٹر سرنگوں ہو چکے ہیں، جیسے مصر، تونس اور لیبیا میں ہوا ہے. امریکہ اپنی ان باتوں سے بحران پیدا کر رہا ہے اور اس کے سیاسی اہداف ہے، ورنہ امریکہ کی دھمکیاں، اسرائیل کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیاں ہیں، اور یہ گیدڑ بھپکیاں بے اثر ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں کسی طرح کا اثر نہیں رکھتی ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کمیشن کی سربراہ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کی درخواست کی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 5+1 گروپ جو ہے وہ بے رنگ ہو چکا ہے، اس کی کوششیں جو ہیں وہ سب بے اثر ہو چکی ہیں، اس کی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں، لہٰذا دوبارہ جو ہے امریکہ 5+1 گروپ کو زندہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس مسئلے میں مداخلت کر سکے، لہذا امریکہ کے ان اقدامات سے 5+1 کو بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ نوابستہ تحریک کے ممالک بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں مستقل موقف کے حامل ہیں، انہوں نے ایران کے موقف کی حمایت کی ہے، اور آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ شیطنت کر رہا ہے اور ایران کو پریشان کرنے کے اقدامات کر رہا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے اور فرار کر رہا ہے، اور ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ روس اور چین آئیں اور وہ امریکہ کا ساتھ دیں تاکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جا سکیں، لیکن چین اور روس نے ان کی بات ٹھکرا دی ہے، اب یہ لوگ چین اور روس کی منت سماجت کر رہے ہیں، اور امریکہ اور اس کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگا کر اسے مجبور کر سکیں، لیکن امریکہ کی یہ کوششیں بھی پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہیں، اور نتن یاہو کی حرکتیں بھی جو ہے وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہیں پوری طرح سے، اور اوباما اور سارکوزی نے جو مذاکرات کیے تھے وہ بھی ایک طرح سے شکست کی علامت ہیں، اور ان لوگوں نے جو گیدڑ بھبکیاں دی تھیں کہ وہ ایران پر فوجی حملے کریں گے، تو اس سے بھی اب مغربی ممالک نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کر لی ہے، اور اس پسپائی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اسٹریٹجک پالیسی ساز ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایران پر مزید پابندیوں کے خلاف چین اور روس نے جو ہے وہ موقف اپنایا ہے، اور چین نے یوکیا آمانو کی رپورٹ کو ایک طرح سے جو ہے وہ امریکہ سے وابستگی کی رپورٹ قرار دیا، اور روس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، لہذا امریکہ ان کھیلوں میں عالمی سطح پر صرف ایران کے خلاف ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر امریکہ مختلف ملکوں سے جو ہے وہ مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک نہایت ہی مذموم پالیسی ہے، لیکن روس نے روس بھی امریکہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ موافق نہیں ہے اور اس کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے۔
بہت شکریہ، اس وقت کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہندوستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان، اگرچہ ہمارا ان سے یہی ہماری درخواست تھی کہ وہ اسٹوڈیو میں آئے، فنی خرابی کی وجہ سے بظاہر اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ دہلی اسٹوڈیو سے برقرار نہیں ہو سکا، بہرحال ہماری گفتگو سے ٹیلی فون پر ہوگی۔ ڈاکٹر ارشد خان صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں کہ جب رپورٹ میں یہ کہا جائے کہ احتمال یہ ہے، امکان یہ ہے کہ ایران اپنے پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے راستے سے ہٹ جائے اور फौजी मकासिद की तरफ चला जाए, यानी इम्कान है, इसका भी इम्कान हो सकता है, तो क्या इम्कानात की बुनियाद पर फैसले किए जा सकते हैं? अगर यही बात है तो यूके अमानो या आईए अमेरिका के बारे में इस तरह का कोई नज़रिया क्यों नहीं देते कि जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए भी हैं, क्यों नहीं ये कह देते कि इम्कान है कि अमेरिका पूरी दुनिया को एटम बम से तबाह कर दे? तो क्या एहतमालात की बुनियाद पर इस तरह की रिपोर्टों की कोई वक़त हो सकती है?
देखिए, फैक्चुअली और लीगली इसकी कोई वक़त नहीं है, लेकिन ये जो यूकियो अमानो के बारे में आपको पता होगा कि 28 अक्टूबर 2011 मतलब ठीक 12 दिन पहले, रिपोर्ट के शाया होने के 12 दिन पहले सीक्रेट विजिट इनका व्हाइट हाउस में हुआ और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों से इनकी मुलाकात हुई, उसको काफी पोशीदा रखा गया, वहां पे क्या बातें हुई, किस तरह से ड्राफ्टिंग की गई। इसलिए कि आप जो देखते हैं इनका जो पूरा 25 पेज का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो रिपोर्ट है, वो एक टेक्निकल और साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है। वो ज्यादातर उसके लैंग्वेज को आप देखें, उसके नेचर ऑफ कंटेंट को देखें, नेचर ऑफ लैंग्वेज को देखें, तो वो हर जगह पे लाइकली टू बी, सीम टू बी, अपियर्स टू बी की बात करता है कि जिसमें अंदेशा है, अप्रायरी की बात कर रहा है, कंजेक्चर्स की बात कर रहा है। इन तमाम चीजों पे एक केस बनाने की कोशिश चल रही है। यूकियो अमानो को पता है आपको कि यूकियो अमानो को वो अभी काफी उनको एक्सेस मिला है, वो खुद विजिट किया है उन्होंने, मतलब 2 महीने पहले ही उन्होंने विजिट किया है ईरान में। जैसा कि आपने खुद कहा कि 4,000 से भी ज्यादा इंस्पेक्शन आईएए ने किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 100 से भी ज्यादा बिल्कुल स्नैपशॉट जो विजिट्स होते हैं उनके, वहां पे उन्होंने किया है। आप ये भी देखते हैं कि 8 साल से ईरान जो है वो कॉपरेट कर रहा है आईएए के साथ, और 6 साल से पूरी तरह से जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड थी ईरान में उसको भी ईरान ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया है कि वो आ सकते हैं, देख सकते हैं, वेरिफिकेशन चल रही है। तो जो रिपोर्ट आप देखते हैं 25 पेज का, जिसमें 15 पेज का अनेक्चर है, इसमें इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, और इल्जाम की बुनियाद नहीं है बल्कि शक है। तो रियली जो ये जो रिपोर्ट है वाकई ये एक लीगल या डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैपिंग है, एक पॉलिटिकल साजिश के तहत है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो दूसरे मुल्क हैं, रशिया, इन्होंने खुद जो है, रशिया ने कहा है कि ड्रिवन बाय डिस्ट्रक्टिव मोटिव है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल है। चाइना खुद इससे मुत्तफिक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आलमी सियासत में जो जो अमेरिका है या उसके जो तावुन करने वाले कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये इन्होंने जो पहले इराक में भी किया था, जो अटैक किया, तो उसमें भी इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी और वो भी बेबुनियाद निकली। और आप जानते हैं कि हैंस ब्लिक्स ने जो नवंबर 2010 में रिपोर्ट की, वो भी उसे उन्होंने जो है अफसोस जाहिर किया कि वहां पे कोई इस तरह की बात नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो पॉलिटिकल गेम है, एक पॉलिटिकल प्लानिंग है, लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि इनकी साजिश ये है जो वेस्टर्न कंट्रीज की, कि किसी न किसी तरह से जो ईरान है उसको डेमोनाइज किया जाए, ईरान को प्रोवोक किया जाए, साइकोलॉजिकली इनको डिस्टर्ब किया जाए, और ईरान के खिलाफ जो पब्लिक ओपिनियन है उसको डिस्टॉर्ट किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए। खास करके ये जो फैब्रिकेशन है जो इन्होंने 25 पेज का रिपोर्ट बनाया है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो भी रिपोर्ट है 25 पेज की, वो खुद डिफाई करती है इनके अपने रिपोर्ट को जो इन्होंने मेरे ख्याल से 24 मई 2011 को दिया था। वो जो रिपोर्ट दिया था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, कोई शक और शुभात की बात नहीं थी। आप ये भी देखते हैं कि 2002 में जब इल्जाम लगाया मुजाहिदीन खल्क ने, सिर्फ उन्होंने कहा कि ईरान के पास एक सीक्रेट वेपन्स प्रोग्राम है, उसके बाद जो ईरानियन लीडरशिप थी उन्होंने बिल्कुल कॉपरेट किया आईएईए के साथ, प्रेशर भी था वेस्टर्न कंट्री का और वो कॉपरेशन बढ़ता गया काफी। और आप ये भी जानते हैं कि 2009 में जो न्यूक्लियर स्वैप की बात हुई, जो P5+1 की बात थी, जिसमें टर्की के साथ एग्री कर गई ईरानियन कि मैं न्यूक्लियर स्वैप के लिए तैयार हूं। लेकिन ईरान की भी अपनी न्यूक्लियर सॉवरेंटी है, एक सॉवरेन स्टेट है, और सिर्फ वो उसके भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को आप देखें तो आईएईए की जो रिपोर्ट है, मैं ये समझता हूं कि इससे ईरान में कोई बौखलाहट नहीं होना चाहिए, ना उन्हें घबराना चाहिए। अमेरिका बेसिकली चाहता है कि ईरान के लोग या जो ईरान है गवर्नमेंट या जो ईरानी इंटेलिजेंसिया है, ईरानियन जो मीडिया है और उसके जो फेवरेबल लोग हैं वो घबराएं, वो इस पे हिस्टेरिकल बन जाएं। ये बेसिकली इनकी प्लानिंग है, ताकि ये चाहते हैं कि इसी हिस्टेरिकल सिचुएशन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए, कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिसकी बुनियाद पे वो फर्दर उसको फैब्रिकेट करें। और आपको ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आई इसका फैब्रिकेशन, फर्दर फैब्रिकेशन शुरू हो गया, इसलिए कि आज के रिपोर्ट में अगर आप देखें कि जर्मनी ने क्या कहा और फ्रांस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिचुएशन इज अलार्मिंग। अब इसी पे और दूसरी चीज जो सबसे अफसोस की बात है, जो वेस्टर्न कॉरपोरेट मीडिया है वो इस तरह से रोल प्ले कर रहा है कि इसमें पूरी तरह से जो फैब्रिकेशन है उसको मजीद मदद मिल रही है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। प्रोफेसर नजीर साहब, आप देखें कि आईएए की फनी जिम्मेदारियां होती हैं, न कि सियासी, और जाहिर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसकी खुद अपने मुआयनाकारों के जरिए जो रिपोर्ट तैयार की जाए उसी की बुनियाद पर डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट बनानी चाहिए। अब जो ये ताज़ा रिपोर्ट बनी है वो इस बुनियाद पर बनी है कि सैटेलाइट के ज़रिए, खला में खलाई आलात के ज़रिए ऐसी तस्वीरें ली गई हैं जिसे कंटेनर को दिखाया गया है, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनके ज़रिए से जो है वो बम बनाने या एटमी हथियार बनाने में मदद हासिल की जा सकती है वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है कि ये जो सैटेलाइट आलात हैं ये अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हैं, फ्रांस के हैं, मगरबी मुल्कों के हैं। तो जब आपको उन्हीं की खुफिया एजेंसियों की ही मालूमात और फराहम करदा इत्तेलात की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाने, तो जो आपका फनी अमला है उसका फलसफे वजूदी क्या बनता है, और ख़ुद आइए ये के इदारे का ही फलसफे वजूदी कहाँ रह जाता है?
बासिर साहब, अभी जो दो मौजूद महानों ने वहाँ गुफ्तगू की है, मेरी जो अव्वल मैंने गुफ्तगू में शुरू में बात की थी उसको तकवियत मिली है, और ये बिल्कुल बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी रिपोर्ट है। और अभी हमारे भाई ने जो भारत से बात की है, देखें उस रिपोर्ट में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो आईएईए है वो 2003 की अमेरिका की रिपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। आप ये देखें कि वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो अमेरिका चाह रहा है, और बड़ी मज़ाक़ खेज बात है, और ये पहली बार नहीं है कि आईएईए जो है वो अमेरिका का एक टूल बन के रह गया है। इससे पहले भी इराक के मामले में, लीबिया के मामले में, नॉर्थ कोरिया के मामले में ये सारी बातें हुई हैं, और ये 25 सफ़ों में से मैं समझता हूँ कि 19 और 20 सफ़े जो हैं कम अज़ कम ये सारे के सारे जो हैं वो सियासी हैं, और सिर्फ 4 और 5 टेक्निकल हैं, और वो भी टेक्निकल इस सूरत में बनते हैं जिसका आपने इशारा किया कि या सैटेलाइट इमेजेस हैं या ऐसी चीज़ें हैं। और मैंने अभी आपको इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून की बात आपको बताई, नो कंक्रीट एविडेंस इज अवेलेबल, मतलब कोई भी मुसद्दका इतलात मौजूद नहीं है। आपने भी ये कहा, हमारे भारत से जो भाई थे उन्होंने भी कहा कि कंजक्चर्स हैं, मे बी, इफ़, कुछ हो सकता है। लिहाजा ये सारी बातें इस बात की तरफ सबूत हैं कि अमेरिका की पुष्पनाही में ये आईएईए की रिपोर्ट एक सियासी मसवदा तो हो सकती है, एक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबरान हैं उनको भी कुछ सोच बचार करना चाहिए कि ये ना सिर्फ आईएईए के लिए एक सियासी धब्बा है बल्कि आईएईए की सॉवरेनिटी पे और उसकी इंटेग्रिटी पे धब्बा है, कि अगर हर मुल्क के खिलाफ ये एक मुआदनाना रवैया अख्तियार करते रहेंगे तो आज अगर ईरान की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। मैं दो और बातें आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा। अभी सरकोजी और ओबामा की मीटिंग होती है वाशिंगटन में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको नहीं मालूम कि माइक खुले रहे, और ये सारी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने खबर नशर की है। सरकोजी ने ये बात कही है कि जो इसराइल का वज़ीर आज़म है वो झूठा है। इसके जवाब में ओबामा ने यह कहा है कि मैं तो इस चीज़ को रोज़ाना बर्दाश्त करता हूँ। अच्छा, जब ये बात उनको मालूम हुई कि जनाब हमारे तो माइक खुले हुए थे, तो उनको तो बहुत मसाइल का सामना पड़ गया, लेकिन मीडिया में ये बात बिल्कुल सामने होकर आ गई। लिहाजा ये देखिए कि इस वक्त सहूनी ताकत ने, सहूनी रजीम ने बड़ी ताकतों को, ख़ासतौर से फ्रांस को और ख़ासतौर से अमेरिका को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। अब मुझे एक बात और दूसरी कहने की इजाज़त दीजिए कि एक और पॉइंट जो शुरू में आपने कहा था कि इस पूरे खित्ते में मशरक़ वस्ता में इसराइल ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो क्यों वो जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, गल्फ़ के ममालिक हैं, इजिप्ट ने ये शुरू में बात की थी कि अगर उनको ईरान से इतना ही ख़तरा है, अगर माल नहीं भेज लाए तो इस पूरे खित्ते को न्यूक्लियाई हथियारों से पाक इलाका करार दे दिया जाए और ईरान को तो साइड पर रखें, सबसे पहले जो इसराइल के पास न्यूक्लियाई हथियार हैं उनको तलफ करने की बात की जाए, वहाँ ये नहीं आते। लिहाजा एक ये भी जरूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि ये बात सही दफ़ा कई दफ़ा अभी न्यूक्लियर स्वैप की बात हुई, टर्की से बात हुई थी, ब्राज़ील से बात हुई थी, अर्जेंटीना से बात हुई थी, रूस से बात हुई थी, लेकिन अमेरिका या उसके इत्तेहादी जो हैं वो किसी भी हाल में मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ मतमई नज़र जो है वो ईरान को प्रेशराइज़ करना है। और मैं ये बात आखिरी बात आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे भाई ने भारत से कहा है कि वो ईरानी कौम को या ईरानी नौजवानों को या ईरानी लोगों को किसी किस्म के डिलेमे, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। एक मैं अमेरिकन जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है उसका एक कोट आपको बताता हूँ, जॉर्ज पर्कोविच उसका नाम है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, आज से नहीं आज से कोई 5-6-8 साल पहले लिखा था, उसने ये लिखा है, ईरानियन न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम इज एम्बेडेड इन देयर नेशनल साइकी।
बहुत बहुत
यानी कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरानियों की नेशनलिज्म में घूट घूट कर भरा हुआ है। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि वो ईरान से उसका हक छीन लेंगे कि वो ताकतवर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हासिल कर ले तो ये नामुमकिन सी बात नजर आती
है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें अनायत किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोशन फिक साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, 3 से 4 मिनट का, 3.5 मिनट का वक्त बचा है, इसमें आपसे जवाब चाहूँगा। एक बार अमेरिका और इसराइल ईरान को धमकी देते हैं और फौरन ही फिर पसपाई अख्तियार करते हैं, क्यों?
ये इस वजह से है कि हमने जो वो लोग जो ईरान के बारे में जो है वो सर्वे करते हैं उसमें गलती करते हैं और उन्होंने जो ये अंदाजे लगाए हैं कि अगर ईरान पर हमला करेंगे तो उनका हमला हरगिज कामयाब नहीं होगा बल्कि उन्हें भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा वार भी थोड़ी सी कम की है। और 4 बातें ऐसी हैं कि ईरान का मौकिफ बहुत ठोस है। 2003 से पहले की जो रिपोर्टें थी और ईरान ने जो है वो इजाफी प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए थे, ये एक अमर है। और उन्होंने जो कुछ इल्जाम लगाए हैं वो 2003 से पहले के थे और इन लोगों का ये इल्जाम कि ईरान में जो है वो एटॉमिक मादा बनाया जा रहा है तो उन लोगों ने उसका 1 ग्राम भी जो है वो साबित नहीं कर पाए और IAEA के मंशूर के मुताबिक ये रिपोर्टें जो IAEA पेश करता है वो माहरीन को बनानी चाहिए न ये कि अमेरिका के जासूसों को, लेकिन ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसको अमेरिका के जासूसों ने बनाया है। दूसरी तरफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान ने IAEA के मुआयना कारों को जो है वो आके अपनी एटमी साइटों का मुआयना करने की इजाजत दी है और अपनी एटमी साइटों के दरवाजे खोल दिए थे, क्या इसको भी अमेरिका छुपा सकता है? और 2003 के बाद भी आला जाहिर जो है जैसा कि वो लोग दावा करते हैं ईरान ने एक मोरिद भी खिलाफ कानून नहीं किया है और इस्लामी जमहूरिया ईरान इब्तदा ही से सारे कवानीन पर अमल करना शुरू किया था। लिहाजा अब अगर कोई मुल्क इस तरह से भरपूर तआवुन करता है तो क्या उसकी तंबीह करनी चाहिए या उसको शौक दिलाना चाहिए या उसे इनाम देना चाहिए? अब ये सवाल पैदा होता है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम किस वजह से जो है वो सलामती काउंसिल में ले जाया गया है, यहाँ पर IAEA को क्या ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपना एतबार खो रहा है, अपनी साख खो रहा है? एक मरतबा तो IAEA के माहरीन आकर ایران کے حقائق کو اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران پر جو جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہے، اور دوسری طرف سے آئی اے ای یہ رپورٹ دیتی ہے کہ ایران نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے آئی اے ای کی ساکھ خراب نہیں ہوگی؟ اسی بنا پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پوری طرح سے پر امن ہے، اور ایران نے جتنا تعاون کیا ہے وہ ایک نہایت اہم چیز ہے، اور بڑے لمبے عرصے تک تعاون کیا ہے، اور یہ تعاون ایک بے نظیر چیز ہے۔
بہت شکریہ ناظرین، ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے معزز مہمانوں سے اور آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ابھی گفتگو جاری تھی اور ہم نے اپنے مہمان کی گفتگو روک دی۔ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران اپنے مسلمہ حقوق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، یہی ایرانی عوام اور حکام کا نعرہ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔